ओके, सो वी आर लाइव। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सौरभ और आज हम एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं और शुरू कर रहे हैं आज का हम लोग का पॉडकास्ट। आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये है इंक्लूसिव सोसाइटी। और आज हम बात करने वाले हैं यश के साथ। काफ़ी डिटेल में बातचीत होने वाला है, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इस पे, और वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ टूडेज सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस दौर से आज हम सब लोग गुजर रहे हैं, ये एक बहुत ही कठिन दौर है। और जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने उठ के आया है। और वो एग्जाम्पल ये है कि हम जब एक तरफ देखते हैं कि लाखों करोड़ों के लेवल पे माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है हमारी सरकार जो है, हम एंटी गवर्नमेंट बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो उनके तरफ से लापरवाही हुई है उसके बारे में तो ज़रूर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो लापरवाही ये है कि एक तरफ जो है लाखों करोड़ों लेबर जो हैं पैदल चल के अपने गांव लौट रहे हैं, काफ़ी मुश्किलें, मुश्किल भरे हालात से वो लोग गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हैं जो हमारे NRIs हैं उनको स्पेशल फ्लाइट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि क्यों ये डिफरेंस है कि कुछ लोगों को हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है, अपने लोगों को वो लोग खो रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं रास्ते पे, खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो है स्पेशल फ्लाइट्स प्लेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों ही इंसान हैं, लेकिन डिफरेंस का क्यों किया जा रहा है? क्या ये NRI हैं इसके लिए और ये हमारे गरीब लेबर्स हैं इसलिए इनका इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? है तो दोनों ही ह्यूमन, तो क्यों ये डिफरेंस है ह्यूमन टू ह्यूमन? हमारे सोसाइटी में क्यों ऐसा डिफरेंस है? हमारा सोसाइटी क्यों इंक्लूसिव नहीं है? और सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है, हमारे सोसाइटी में एक डिसेबिलिटी और एबिलिटी के बीच में भी बहुत एक खाई बना हुआ है जिसको हम कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन काफ़ी लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ यश जुड़े हुए हैं कोलकाता से। आज हम यश के साथ बात करेंगे। यश के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसी की ज़ुबानी हम उसका इंट्रोडक्शन सुनेंगे और एक बहुत ही एक सच्चाई जो कहानी छुपा हुआ है यश के अंदर, आज यश हमारे साथ वो शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा हमारे सारे लिसनर्स जो हैं वो कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें इस डिस्कशन में, और हमें कमेंट के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं, हमें सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन Q&A वाला सेशन हम लोग बाद में करेंगे, लास्ट में। शुरुआत में हम लोग डिस्कशन करते हैं और कहानी सुनते हैं यश से। सो यश जो हैं ही इज़ अ राइटर, फिल्म मेकर, वीडियो एडिटर, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमनिस्ट। काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं और काफ़ी सारे टैलेंट है इसमें। ये खुद एक किताब भी लिख रहे हैं जिसके बारे में वो खुद बताएंगे हमें। लेकिन सबसे पहला जो है यश यश के पास हम लोग सबसे पहले सुनेंगे उनकी उनकी ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। एक इंट्रोडक्शन यश की तरफ से मैं सुनना चाहूँगा। सो यश, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो एक अपना इंट्रोडक्शन हमारे सारे लिसनर्स के लिए एक बार बता दो।
थैंक यू सौरभ, थैंक यू। पहली बार तो आपने मुझे इस लाइव पे बुलाया और सारे लिसनर्स को भी जितने जिन्होंने अभी तक ट्यून इन हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चाहेंगे हम सबकी सब अच्छे से शेयर कर सकें। मेरी कहानी तो अभी लिखी जा रही है एक्चुअली, पर अभी तक की कहानी यही है कि मैं 18 साल का था, कोटा में था, ITJEE की प्रिपरेशन कर रहा था ड्रॉप ईयर लेके। तो उधर ही 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पे हूँ। और 5 साल पहले मुझे राइटिंग से प्यार हुआ, स्टोरी टेलिंग से प्यार हुआ, तो तब से उसे परस्यू कर रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग एक्चुअली बचपन से ही पसंद थी, झूठ बोलना काफ़ी पसंद था, तो उस समय से ही स्टोरी टेलिंग का पैशन फॉलो कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी शॉर्ट फिल्म, वीडियो, स्केचेस, ये सब काफ़ी बनाए, फिल्म बनाई, फिल्म मेकिंग प्रोसेस पूरा सीखा, और अभी अपनी फीचर फिल्म प्रोडक्शंस के पास ले जाने की कोशिश चालू है। स्ट्रगल और रिजेक्शन का प्रोसेस चालू है, और मैं 2 बुक पे काम भी कर रहा हूँ। एक कोलैबोरेशन है किसी के साथ, वो जल्दी होने वाला है, और दूसरी बुक भी उसके बाद जल्दी ही आएगी। तो 8 साल हो चुके हैं इंजरी को, और अभी फिलहाल तो यही है प्रोसेस और मेरा इंट्रोडक्शन।
तो यश, क्या तुम थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि तुम एक समय था जब तुमने एक ऐसा दुनिया देखा है जो अपने पैरों से तुमने उस दुनिया को देखा है, और आज तुम व्हील चेयर पे हो, तो तुमने दोनों दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। तो सबसे पहले तो ये जो दो दुनिया है, ये दुनिया एक दूसरे से कितने अलग है और कितने कठिनाई कठिन दुनिया है ये दोनों अपने आप में, और कैसे जो है लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होता है इस दो अलग अलग दुनिया की तरफ, अगर उस चीज़ पे हम थोड़ा सा शुरुआत में रोशनी डालें और उसी से हम डिस्कशन शुरू करते हैं।
तो दुनिया की मतलब ये दोनों दुनिया तो मैं अभी भी देखता हूँ, पहले भी मैं देखता था, अपने साथ में भी अभी भी देखता हूँ। और क्योंकि अभी भी वही प्रॉब्लम्स भी है मेरे लाइफ में, और एडिशनल जो मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं प्रॉब्लम्स जो ये इंजरी के साथ में, वो तो है। पर मेरी लाइफ उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली थी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड्स थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी चीज़ें मिली है लाइफ से। और पर एक्सेसिबिलिटी के तौर पे और इंक्लूसिव होने के तौर पे वहाँ पे पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। मेरा जब एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ तब मैं अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहा था, पर उसके बाद में जब मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू करने की कोशिश करी तो कॉलेजेस एक्सेसिबल नहीं है, मेरे को कुछ अलग कोर्सेज ज्वाइन करने थे तो कहीं कोर्स करने नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वो अलग तरह की प्रॉब्लम। टूर्स एंड ट्रैवल, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा इशू, और अलग अलग तरह की इश्यूज जो इस इंजरी के साथ में आई है, तो वो ड्रास्टिक डिफरेंस वहाँ पे दिखने लग गया कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ की कहाँ पे है। और ये अपने आप मतलब दिखने लग गया कि हमारे बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कि जो मतलब इंसान के बीच में ही कितना ज्यादा डिफरेंस है, वो कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव हो सकता है। कि आपको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, आपको वीआईपी बना देते हैं, आपको एक इंस्पिरेशन जरूर बना देते हैं आप अगर व्हीलचेयर में हो तो, पर उसके बाद जो क्या बोलते हैं एक वैल्यू जो रहती है लाइफ की, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि इंसान अपने अंदर से अपनी वैल्यू को खत्म कर देता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा जो मैं पहले कर सकता था। मुझे डांस करना पसंद था, मुझे ये करना पसंद था, मुझे घूमने जाना पसंद है, मुझे ये करना है वो करना है, पर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें मेरे लिए वैसी एक्सेसिबल नहीं है। और जो नॉर्मल लाइफ में मैं चीज़ें कर सकता हूँ वो अब मैं नहीं कर सकता। ये भी एक चेंज्ड वर्ल्ड है, इसको हम बेटर बना सकते हैं, काफी नॉर्मल बना सकते हैं लोगों के लिए, पर उसके लिए मेहनत करना होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स पे कि किस तरह से उस चीज को बेटर करना है।
तो एक सवाल से शुरू करते हैं, वो ये है कि मुझे अक्सर ये महसूस होता है, मैं अक्सर जब ऐसे चीज़ों के साथ गुजरता हूँ, मतलब ऐसे चीज़ों को मैं देखता हूँ अपने आँखों से, मुझे हमेशा ये बहुत फील होता है कि लोग कहते तो हैं मुझसे कि येस आई एम अ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स यू नो हैंडीकैप पीपल या डिजेबल पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका जो एफर्ट होता है वो बहुत हाफ हार्टेड एफर्ट होता है, बहुत ही आधा अधूरा। तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
हाँ, मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हाफ तो आपने बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया, हाफ तो है ही नहीं। सबसे पहला फ्रैक्शन ऑफ 10% भी हो तो आई डाउट, इनके एफर्ट्स में सिंपैथी है और कुछ ज्यादा दिलदार लोगों के मन में डोनेशन आ जाती है कि हाँ डोनेशन है। जो लोग इसमें अपनी लाइफ डिवोट कर चुके हैं, जिनके एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, जिनके ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स है जिनकी इंक्लूसिव स्कूल्स है, अब उनसे पूछे तो प्रॉब्लम रूट्स में है, सोसाइटी के रूट्स में है, उनको इंक्लूसिव बनाना होगा। फिर धीरे धीरे हर स्टेज को, तब चीजें हाफ पे पहुंचेगी। गवर्नमेंट, वर्ल्ड लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, जब तक डिफरेंटली एबल्ड पीपल को इंस्पिरेशन की तरह नहीं, ह्यूमंस के ह्यूमन की तरह देखना चालू करें, तब सब कुछ होगा। और फिर जो बाकी हाफ है वो जनता को पूरा करना है अपनी जानकारी से। और अभी आपने एक वर्ड का यूज किया तो उस वर्ड का मैं भी एक डेफिनेशन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने ही ये करके रखा है, आई मीन डिफाइन कर रखा है हैंडीकैप। हैंडीकैप का डेफिनेशन ये नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि हमें जैसे एक हैंडीकैप का टैग दिया जाता है, डिसेबिलिटी मेरे बॉडी की कोई पार्ट की डिसेबिलिटी है और मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ कि हाँ मैं किसी अलग तरह से एबल्ड हूँ, बट मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। हैंडीकैप डिसेबिलिटी का सिनोनिम नहीं है, ये उसका क्या बोलते हैं ये एक फिजिकल या सेंसरी मेंटल लिमिटेशन को अगर किसी पर्सन की एबिलिटी में देखने या चलने में या सुनने में या कुछ सीखने में अगर रोक डाले उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। और हैंडीकैप का मतलब होता है कि वो कोई चीज का मतलब कोई बैरियर हो मेरे रास्ते पे, मेरे एनवायरनमेंट पे या कुछ। तो जैसे कि एग्जांपल है कि मेरे लिए अगर मैं व्हीलचेयर यूजर हूं तो मेरे लिए जो एक सीढ़ी है स्टेयरवेज वो मेरे लिए हैंडीकैप है। और ये जो लोग मेरे को हैंडीकैप बताना चाहते हैं कि मतलब ये हैंडीकैप है इसका या ये इसकी प्रॉब्लम है वो अलग है। मतलब हम लोग को लोग क्या हैंडीकैप की तरह एक टैग दे रहे थे। हैंडीकैप इज द फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो एनवायरनमेंट है हमारे अगल बगल पे। ये पीपल ये डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है और ये दोनों सिनोनिम नहीं है।
राइट राइट तो काफ़ी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में और हमारे समझ बोझ के अंदर कि जो हम शायद उसका मीनिंग ठीक से नहीं जानते हैं, उसका एप्लीकेशन शायद ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर उस चीज़ को यूज़ करते रहते हैं। तो मैं
हाँ
जानना
हाँ
चाहूँगा यश, कोई ऐसा इंसिडेंट है आपके साथ हुआ है जहाँ पे आप ये जो आप हम बता रहे हैं कि हैंडीकैप और डिसेबिलिटी ये काफ़ी अलग चीज़ है दोनों, क्या आप कोई एग्जाम्पल या ऐसा कुछ देके हमें इसको और डिटेल में बता सकते हैं?
थोड़ा सा आप मेरे को एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन की क्या एग्जैक्टली बताऊँ मैं।
जैसे आपने अभी कहा कि ये जो डिसेबिलिटी है और जो हैंडीकैप है ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, इसका अलग अलग मतलब है, लेकिन एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को दोनों जो है दोनों का मीनिंग सेम लगता है कि जो जिसको हम डिजेबल बोलते हैं उसको हम हैंडीकैप बोलते हैं। तो क्या ऐसा कोई डिफरेंस या कोई एग्जाम्पल दे के आप समझा सकते हैं या आपके साथ कुछ हुआ है जहाँ पे लोग आपको हैंडीकैप समझ रहे हैं और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हैंडीकैप कुछ अलग चीज़ है लेकिन डिजेबल एक अलग चीज़ है, आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा और इसी
ये
कारण
तो
से।
मतलब काइंड ऑफ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट।
हाँ
अब बोलिए।
नहीं नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू, तुमने पकड़ लिया है।
हाँ तो बेसिकली यही चीज है कि ये तो मतलब लाइफ लॉन्ग होते आ रहा है। मतलब ये मेरे साथ तो और जितने भी लोग हैं जिनको मतलब देखने में तकलीफ है, जिनको चलने में तकलीफ है, जिनको सुनने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, या जिनको मेंटली थोड़ा सा क्या बोलते हैं इशू है बचपन से, या ये तो सबके साथ होता। उनको हैंडीकैप कर दिया जाता है और उनको डिसेबल्ड कर दिया जाता है। वो है नहीं, उनकी एबिलिटी पर ध्यान नहीं रखा जाता, उनको हैंडीकैप बोल के उनको मतलब इस तरह से एक जो कैटेगरी में डाल दे रहे हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ये कैटेगरी में डाल दे रहे हैं आपको हैंडीकैप के, और फिर स्पेशल प्रिविलेजेस और ये सब सब डाल के इस चीज को मतलब हमारी एबिलिटी खत्म कर देते हैं कि आज मेरे चलने की एबिलिटी गई है पर मेरी दूसरी एबिलिटीज है ऑलरेडी, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना, या कोई भी अगर हो तो वो उसको फोकस करे और उसको एम्पावर करने की कोशिश करे, कम से कम उस पर तो अड़चन ना डाले। अब ये तो जो है ये मेडिकल प्रॉब्लम है, ये मेडिकल प्रॉब्लम, और मेडिकल प्रॉब्लम मेडिकल इश्यू मेडिकल साइंस ही दूर कर सकता है, ये जनता के बात में बात नहीं है। पर जो दूसरी एबिलिटीज है मेरी वो तो सोसाइटी हील कर सकती है ना, या उसको एम्पावर कर सकती है। तो ये तो मतलब लाइफ लॉन्ग सबके साथ होते आ रहा है, इवन विद नॉर्मल पीपल एज वेल। कोई नॉर्मल आदमी भी हो अगर उसको छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी चीज का इश्यू हो जाए तो उसको हैंडीकैप बना के उनके ऑफिसेज में या किसी भी चीज में उस चीज को हैंडीकैप बना के या उस चीज के ऊपर में उनके ब्लेम करके उनके साथ हमेशा अन्याय होते आ रहा है। तो ये तो काइंड ऑफ मतलब अनफेयर मीन्स तो हर जगह पे फैली हुई है और ये तो हर समय होता आ रहा है हर जगह पे।
और क्या तुम्हें ये भी लगता है कि हमेशा जो है कि एक ना बहुत बड़ा लेसन या बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने के बाद ही लोग समझते हैं कि अरे हाँ सोसाइटी थोड़ा और इंक्लूसिव होना चाहिए, हम सबको एक साथ चलना चाहिए, उनको भी एक साथ लेना चाहिए, क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़रूरी है? मतलब क्या नॉर्मली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं?
देखिए सौरभ एक्चुअली क्या है ना, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ना ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है ना ये लोग ना उस पे निर्भर हो चुके हैं। सब अपने आप को स्पेशल समझते हैं जब तक कि वो नहीं रहते। जब तक मेरी फैमिली पे नहीं आई थी ये प्रॉब्लम तो मैं भी अनजान था, मेरी फैमिली अनजान थी, किसी को इसके बारे में कोई डेप्थ का एहसास नहीं था कि ये क्या है क्या है कैसे इसको डील किया जाता है। मुझे याद भी नहीं कि मेरे को मतलब मैं अपने लाइफ में ज्यादा किसी को देखा होगा या किसी के लिए मतलब मैंने कुछ किया, मतलब मैंने रास्ते में देखे हैं लोग के जिनको दिखने में तकलीफ है, साइटलेस है जो, या स्टेशन के पास बेचारे जो कोई गरीब लोग भीख मांगते हैं, हॉस्पिटल्स में मैंने लोगों को देखा है व्हील चेयर पे, और भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तकलीफ में, पर मैंने क्या सच में उनको देखा है? मतलब मैंने तो चारों तरफ, मतलब चलिए मेरे तरफ तो अवेयरनेस नहीं थी उतनी, मेरे को जानकारी नहीं थी कि ये इन तरह की चीजें, पर जिनको है, जिनको देख के भी समझ नहीं आ रही कि ये प्रॉब्लम्स है, दुख तो उनसे होता है ना, हम इधर उधर देखना ही नहीं चाहते, इसलिए रियलाइजेशन सर पे पत्थर गिरने तक इंतजार करती है। दूसरे पे गिरा तो चोट दिखती है, चोट की आवाज नहीं दिखती या वजह नहीं दिखती, और दिख भी जाए तो समझने के लिए जिस तरह से उनको लगी वैसे नहीं लगनी चाहिए थी, हम लोग ये सोचते हैं, और कोई ये नहीं सोचता कि जाके रास्ते का पत्थर हटा दिया जाए, या मैं खुद ही जाके वो रास्ते का पत्थर हटा सकता हूँ या सकती हूँ, तो उनके लिए भी जिंदगी आसान हो जाएगी और हमारे लिए भी। किसको मालूम किसके साथ क्या हो सकता है, कल अगर किसी और के साथ खुद के लिए हो गया तो उनके लिए भी तो वो रास्ते का पत्थर हट जाएगा। तो बेसिकली यही है कि सबको अपने इंडिविजुअल रियलाइजेशन के बारे में मतलब लगता है कि वही मेरे लिए बड़ा लेसन है, जब तक उनके साथ ये नहीं हो जाता तब तक वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, पर इंसान को तो वो होना चाहिए ना कि दूसरे की प्रॉब्लम देख के समझे और उससे सीखे और उस चीज को दूर करे, उनके लिए भी और फ्यूचर में कभी वो अपने अपने किसी खास या फैमिली मेंबर के साथ हो तो उनके लिए भी वो चीज अच्छी हो जाएगी, अपने लिए होने तक वेट ना करे।
और एक और सवाल इसमें से आ रहा है जो मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि चलो मान लिया कि एक थोड़ा सा रियलाइजेशन चाहिए इस सब चीज़ों पे गौर करने के लिए, लेकिन क्या हमारा सोसाइटी मतलब इतना इनसेंसिटिव टुवर्ड्स डिजेबिलिटी कैसे हो सकता है? मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
इसका जवाब थोड़ा लेंदी है, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आराम से, क्योंकि ये काफी ठीक है। देखिए हम, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो हमें इंसान नहीं समझते, जो हमारी सोसाइटी है वो जनरली इंसान नहीं समझते, ये काफी हार्श है ये शब्द मेरे को पता है, पर वो जनरली हम लोग को एक मरीज या एक इंजर्ड बॉडी की तरह दिखते हैं जिसमें आत्मा है पर उसका दर्द नहीं है। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा स्ट्रांग रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा खुश रहने का, जबकि समाज कमजोर बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है, और ये कांस्टेंट जो हैप्पीनेस, पॉजिटिव रहने का प्रेशर है, इस कारण इंसान अपने दुख को भी पूरी तरह से जी नहीं पाता है, ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, सप्रेस कर देता है उन फीलिंग्स को, उन चीजों को और सब चीज को। फैमिली या कोई लोग फिर इसको कमजोरी समझने लगेंगे, इसके डर से हर फीलिंग्स हर कुछ सप्रेस करने लग जाता है, और इससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है आपकी, और वो अलग प्रॉब्लम्स अराइज करती है फिजिकल स्ट्रगल्स के साथ में, तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, टफ हो जाती है सिचुएशन, हर कुछ कोई खुल के फील करने की छूट देनी चाहिए थोड़ी, तो जज मत करो किसी को कि कोई क्या फील कर रहा है और कैसे डील कर रहा है या कैसे हो रही है। एक हार्ट ब्रेक भी अगर किसी को हो रहा है छोटा सा, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, लवर के साथ, या फैमिली में भी किसी के साथ, कोई रिलेशन में हो, कजिन हो, किसी के साथ, उसको उसको पूरी तरह से फील करने दो, उसको मोल्ड करने दो, उस चीज को सप्रेस नहीं करना चाहिए किसी भी फीलिंग को, और उसको खुल के एक्सप्रेस करने की आजादी मिलनी चाहिए। तो और हमें क्या हो गया है कि हमें इंसान की तरह देखने से क्या है कि एक बराबर दर्जा मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमारा कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हुआ है, डिसेबिलिटी में एबिलिटी चेंज हुई है, खत्म नहीं हुई है, लोग कमजोरी देखते हैं, स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं, कि चलने की ताकत गई है पर ब्रेन की पावर तो अभी तक है ना यार, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। तो इसीलिए हमको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है कि जनरली डिफरेंटली एबल्ड है, ये लोग अलग तरह से एबल्ड है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है सब कुछ। आज दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, 1 बिलियन, अभी मतलब 1 में से 7 लोग की फैमिली कोई ना कोई पर्सनली अफेक्टेड हो गई, किसी ना किसी में फैमिली मेंबर या उनके फ्रेंड या कोई किसी ना किसी के कनेक्शन में होंगे। 1 बिलियन में 0 ऐड करने जाओ अगर अपने दिमाग में, तो समझ आएगा कि मतलब कितना ज्यादा वो कितना ज्यादा बड़ा नंबर है, हमारे जो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें 1 बिलियन कितना ज्यादा बड़ा नंबर है, और कोई ना कोई मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है, फिर भी इक्वालिटी का दर्जा नहीं है, फिर भी इक्वल दर्जा नहीं मिलता, सोसाइटी में एंट्री नहीं है, स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, स्कूल्स अलग है, सीट्स अलग है, जॉब्स तो है ही नहीं, एकदम लिमिटेड है। ऐसा क्यों है? क्या हमारे सपने नहीं है, नीड्स नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की? ये सवाल मैं जनरली नहीं पूछ रहा, ये सवाल अपने आप से लोगों को पूछना चाहिए। उसके बाद जो उस चीज का जवाब मिलेगा, उसके बाद ये सोचना कि हम क्या कर रहे हैं एज इंडिविजुअल या एज सोसाइटी इस चीज के लिए। तो वो जो थॉट है वो आंसर है कि हम लोग क्यों सोसाइटी के लिए इतने ज्यादा इनसेंसिटिव है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने शो किया है कि जो ये लैक ऑफ इंक्लूजन है, इसके कारण पूरी इकोनॉमी कभी पूरी तरह से क्या बोलते हैं बूम नहीं कर पाती है, नेशनल प्रोडक्टिविटी सफर करती है पूरी गवर्नमेंट की हर जगह पे, उनको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, उनका टैक्स रेवेन्यूज कम होता जाता है इस चक्कर में। और ये क्या बोलते हैं अदर स्टडीज तो ये भी बता रही है कि ग्लोबल जीडीपी 5 से 7% नुकसान झेलता है इन चीजों के बारे में, और ये तो फिर भी कुछ साल पहले का है। तो अभी तो आप सोच ही लीजिए, अभी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते अभी क्या हाल हो गया होगा। अभी एक एग्जाम्पल था, बहुत फेमस एग्जाम्पल, कि बांग्लादेश के क्या बोलते हैं कम से कम $54 मिलियन पर ईयर वो लूज करता है खाली लैक ऑफ एजुकेशन और डिसेबल्ड पीपल के कारण। तो वहाँ पे जो ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, डिसेबल्ड पीपल है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, तो वो लोग एस्टिमेटेड $54 मिलियन पर ईयर लूज करते हैं और उनके केयरटेकर्स के कारण। और गवर्नमेंट फिलीपींस की तो अलग ही हाल चल रहा है, उनका 8 से 9 मिलियन डॉलर उनके हाई एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं अनकरप्टेड क्लिप फ्लिप्स और पैलाडिस के कारण। तो वो प्रॉब्लम्स अलग चल रही है। तो मतलब इंक्लूजन सब चीजों में राउंड अबाउट हेल्प करता है, डेवलपिंग एज ह्यूमंस, डेवलपिंग एज अ सोसाइटी एंड डेवलपिंग अ इकोनॉमी एज वेल, एन इकोनॉमी एज वेल।
मतलब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं और वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्लियर
वर्ल्ड
स्टेटमेंट भी
बैंक,
है।
यूनाइटेड नेशंस, हाँ हर तरफ से है ये, हर तरफ में। मैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स बताऊंगा आगे में कि क्या एग्जैक्टली चीजें हैं और इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस है जिनका यूज नहीं लिया जा रहा।
और मुझे लगता है ये चीज़ जो है, ये चीज़ एक चीज़ है कि ऐसे इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम है लोगों तक कि भाई अगर मुझे आज पता चले कि हमारे इकोनॉमी में एक आउट ऑफ सेवन एवरी 1% इज समहाउ डिजेबल्ड और उनका तादाद इतना बड़ा है, उनको अगर हम इंक्लूसिव कर ले, मतलब इंक्लूड कर ले हमारी इकोनॉमी में, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बूम हो सकता है। अगर ये चीज़ किसी के दिमाग में आ जाए तो नेचुरली वो कुछ करेगा। मुझे लगता है दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच नीडेड इन आवर सोसाइटी। क्या लगता है तुम्हें?
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये डेटा, यही तो बात हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट नोमैड के थ्रू और हर तरफ के थ्रू कि अवेयरनेस इन चीजों की फैलाई जाए। आज जो ये लाइव हो रहा है और जो हम ये करनी चाह रहे हैं और जो इस कन्वर्सेशन को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ये इसीलिए इस तरह का अवेयरनेस फैला जाएगी। लोग पूछते हैं तुम्हारी हेल्प क्यों करें, हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें या क्या करें, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लाइफ से मतलब नहीं है इस चीज का, जिसको प्रॉब्लम है वो देखेगा, गवर्नमेंट करेगी, लोग करेंगे, ये करेंगे, सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ये सबको बेनिफिट करेगा, एक साथ में एक सोसाइटी बनाना सबको बेनिफिट करेगा इस तरह से।
तो अगर हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने आज रेज़ किया है, और मुझे लगता है इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है इसी इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेके आप इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, इस पे और रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे अगर हम हमारे सोसाइटी को और इंक्लूसिव करें, ये जो जितने डिजेबल लोग हैं ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से ये एबल भी हैं। ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुके हैं। हमारा हो सकता है दृष्टिकोण थोड़ा सा उनके तरफ अलग है, लेकिन आज हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स है, ये डेटा है और ये इन्फॉर्मेशन है, वो भी फ्रॉम वैलिड सोर्सेज, जो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस ग्रुप डिजेबल लोगों को अगर हम अपनी इकोनॉमी में ऐड करें और उनको अलग अलग काम दें, उनको अगर मौका दिया जाए तो वो हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ सकता है। तो मुझे लगता है जब आज जब हम लॉकडाउन में बैठे हैं, हमें ये सारा चीज़ बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, और जो लोग ऐसे पोजीशन पे हैं कि वो कुछ इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उनको सबसे पहले स्टेप आउट करके इमीडिएटली जब फिर से दुनिया शुरू होने वाली है, क्योंकि हम एक नया दुनिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद, तो तो जब एक फिर से एक नया दुनिया आएगा, क्यों ना उस दुनिया को हम और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, ये सारे रिसर्च और ये सारे डेटास को लेके हम फिर से क्यों ना थोड़ा सा काम करें, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट ही चाहिए। जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एफर्ट देने लगेंगे तो यूनाइटेडली वो एक बहुत बड़ा एफर्ट होके बन जाता है। तो इसी के साथ यश, मैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, और मैं लगभग लास्ट 1 साल से जितना मैंने ट्रैवलिंग किया है, जितने स्कूलों को विजिट किया है, जितने लोगों से मैंने मिला है, मैंने सबको ये सवाल कई ना कई बार किसी ना किसी तरीके से मैंने पूछा है। और वो ये है कि जब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है और इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं मुझे हमेशा लगता है कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, जब उसका एडुकेशन, बेसिक एडुकेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, ये जब उसके दिमाग में धीरे धीरे घुसना शुरू होता है, वो शुरू होता है स्कूल से, जब उसको बेसिक एडुकेशन मिलता है, प्राइमरी एडुकेशन मिलता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे स्कूल में ही हमारा स्कूल जो है वही इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 10 स्कूल मुझे नहीं लगता हर स्कूल में, हो सकता है प्रोविजन है, लेकिन उस स्कूल में डिजेबल बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बचपन से ही हम जो
और
हैं
मिलता भी होगा तो साथ में पढ़ाया नहीं जाता होगा।
मिलता भी हो तो साथ में पढ़ाया नहीं जाता होगा, बहुत ही अलग अलग रख के किया जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है बचपन से ही हम अपने बच्चों को एक ऐसे मीडियम से बड़ा करने लगते हैं जहाँ पे हम उनको बचपन से ही सिखाते हैं कि भाई ये जो डिजेबल लोग होते हैं ये तो कुछ अलग ही किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ अगर हम एक साथ चलने की कोशिश करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, तो इनको तुम छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। और ये हर स्कूल में प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि हो सकता है कि लॉ है, हो सकता है कि पॉलिसीज बने हुए हैं कि हर स्कूल को, लेकिन स्कूल अपने लेवल पे करता नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यश, कि हम अपने स्कूल में, अगर स्कूल के फाउंडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए और ऐसा कुछ शुरू करे कि अपने बच्चों को समझाए कि देखो ये जब हम सोसाइटी में स्टेप आउट करेंगे तो वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, और उसका जो शुरुआती स्टेप है वो स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। तो इंक्लूसिव सोसाइटी का लर्निंग, जैसे कि सेक्स एडुकेशन होता है और कंपलसरी है, वैसे मुझे लगता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी के सोसाइटी का लर्निंग भी इंक्लूसिव अपना सॉरी इंक्लूसिव नहीं कंपलसरी स्कूल लेवल पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे होना चाहिए। इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है?
देखिए, आप जो कह रहे एकदम एकदम सही चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स बाउंड्रीज। डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी चीज में जो बाउंड्री बनाता है या एक लिमिट बना देता है ना लोगों के लिए, वो लिमिट हमेशा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम रहती है कि आप एक लिमिट में या आप एक रूल में बन जा रहे हैं कि आप कुछ और जो लाइफ को अगर आप फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हैं आप वो कर नहीं पा रहे। तो वी एज अ सोसाइटी अगर हम लोग डिविजन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बचपन से, मतलब बच्चों के बचपन से अगर हम लोग उनको डिविजन करना ही सिखा रहे सोसाइटी को, तो ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मेरे फैमिली के बच्चे हैं, जितने भी हैं, मेरे जितने भी भतीजा भतीजी है और भी मेरे जितने भी फैमिली में बच्चे हैं, उन्होंने अपने बचपन से अपने मोस्टली टाइम पे मुझे व्हीलचेयर में देखा है, ठीक है, और अपने सारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, खुद भी वो लोग वॉकिंग एबिलिटी के साथ देखा है, ठीक है। तो जब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करें, वो उनको ना कभी अबनॉर्मल फील होता है और ना मुझे कभी अबनॉर्मल फील होता है। उनके कुछ सवाल रहते हैं कि ऐसा क्यों, उनका जवाब दे देता हूं मैं कि ऐसा क्यों है। उनके अंदर एम्पैथी राइज होते हुए देखी है मैंने। जहां बड़े लोग मुझे सिंपैथी या पिटी देते आए हैं हमेशा से, बच्चों के अंदर में एम्पैथी का डेवलपमेंट देखा है मेरे मैंने। वो इतना ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि यार बच्चे इतने छोटे छोटे, इनके अंदर इतनी एम्पैथी भरी हुई है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ बच्चे देखे जो रास्ते में, मॉल्स में, स्टेशन में, एयरपोर्ट में, या कहीं भी, मैंने जहां जहां पे भी गया, जब भी मेरे को या पहले भी किसी दूसरे को भी कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जा रहा है जो बेचारा कोई देख नहीं सकता, या कोई क्रचेस लेके जा रहा है लिम्प करते हुए, या किसी की स्पीच इम्पेयरमेंट है या कुछ है, तो या कोई बेचारे जो ड्वार्फ है, वर्टिकली चैलेंज्ड है, तो उन लोग या पेरेंट्स से या कुछ तो भी, वो लोग बच्चे थोड़े डर जाते हैं और उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करके साइड में ले जाते हैं कि नहीं बेटा इनसे थोड़ा दूर रहना या ऐसा कुछ। या तो उनके अपेरेंट से डर जाते हैं या तो उनके डिसेबिलिटी से डर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती है। तो ये दोनों जो राइज है, क्योंकि ना पेरेंट्स और ना बच्चे कोई इस चीज से जुड़ना नहीं चाहता या समझना नहीं चाहता। बच्चे को तो चलो कोई ज्ञान नहीं है, पर पेरेंट्स पेरेंट्स को तो मालूम है कि ये रियलिटी है लाइफ की, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हमारा तो ये मतलब ये है कि हम जिन चीजों को समझते नहीं है उन चीजों से डर जाते हैं और उनसे दूर भागते हैं। मतलब बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है ये, तो उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते। आज मेरे घर के बच्चे जब इस चीज को नॉर्मल ट्रीट करते हैं, तो कम से कम फैमिली में अगर किसी के साथ या उनके साथ ही कभी कुछ हो, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो, तो डील करने का तरीका तो बेटर होगा। बिकॉज उनको पता है कि ये उनको कम इंसान नहीं बनाता, और इसके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे और मोस्ट पीपल जो है वो डिप्रेशन से सफर करते हैं, अगर उनको किसी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी हो जाए, या बाय बर्थ किसी तरह के डिफेक्ट से पैदा हुए बच्चे या कुछ हो। उनकी पेरेंट्स और फैमिली सबसे ज्यादा सफर करती है, क्योंकि लोग सिंपैथी और इन चीजों में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि उनकी एबिलिटी पे या एक्सेसिबिलिटी पे कोई ध्यान ही नहीं देता कि उन चीजों को कैसे एम्पावर किया जाए। तो उन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स भी है काफी, और वो लोग मतलब मरना ज्यादा पसंद करते हैं इस इंजुरी से, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ये फीलिंग ऐसी है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लोग मेरे को ये बोलेंगे, मैं वहां जा नहीं सकता, मैं उसके साथ घूम नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती या कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक लोग लड़ते आए हैं ना इस चीज से, तो हमें लड़ना ही होगा कि इसको किस तरह से ओवर पावर करना है इस चीजों को। और कोई एक इंसान अगर इस चीज को अचीव करेगा तो 10 और को हिम्मत मिलेगी। तो दुनिया के मतलब दुनिया से हम लोग ने हाथ नहीं मांगा है, रास्ता मांगा है, बना दो हम खुद आ जाएंगे, बस इतना ही है सिंपल सी चीज। और हमारी इंडिया जैसी कंट्री या एजुकेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर रहा है बच्चों के लिए, और अभी बिल्ड कर रहे हैं सब कुछ, तो मेरे को लगता है ये एकदम राइट टाइम है ये सिस्टम को एम्पावर करने का भी, कि इसमें ये चीज को डाल दो और सोसाइटी के हर पार्ट में चीजों को डालो, ये सिस्टम को प्रॉपरली प्लेस में डालो। तो अभी जो ये बिल्ड हो रहा है कि रूरल इंडियाज में या 2 टायर 3 टायर सिटीज में जो भी चीजें बिल्ड हो रही है, और मेजर सिटीज में भी, तो वहां पे जो सिस्टम बिल्ड हो रहा है उसमें ये इस चीज को भी डाल दिया जाए, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को और सेक्स एजुकेशन को अगर साथ में ही इंक्लूड कर दिया जाए एट द राइट टाइम, तो आने वाली जनरेशन के लिए मतलब मैं बता नहीं सकता वो कितना ज्यादा एम्पावरिंग होगा, और उनके लिए लाइफ कितनी ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो इस चीज की अवेयरनेस फैलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे स्कूल में तो ये मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में और वर्क प्लेसेस में हर जगह ये इम्पोर्टेंट है अभी अवेयरनेस।
और एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल के साथ साथ ये भी लगता है कि स्कूल में जब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन सिखाया जाएगा तो उस पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बहुत बार देखा है कि क्योंकि हम इनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना इनके बीच में होता नहीं है। कि मैं अगर सपोज़ सपोज़ एक हियरिंग डिजेबल या तो स्पीच डिजेबल के साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं तो इसी सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं इनसे कम्युनिकेट कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, इनको समझाऊँ कैसे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं अपना सवाल कैसे इन तक पहुँचाऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे चीज़ों को कंपलसरी रूप में लाना पड़ेगा, जैसे कि आज हमारे लिए अगर हिंदी इंग्लिश ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो साइन लैंग्वेज है वो भी एक कंपलसरी रूप में हमारे सोसाइटी में लाना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें?
एकदम डेफिनेटली। ये चीज के बारे में जो आप बोल रहे हैं, यही सोच के तो मैंने साइन लैंग्वेज सीखना चालू किया है। मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ खुद से, कि मैं अगर मेरे को कभी कम्युनिकेट करना पड़े इन लोगों से तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। मुझे बात तो करनी ही है, उनके बारे में जानना ही है सब कुछ। तो ये मैं जब अपने ऊपर पर्सनली ले सकता हूँ कि हाँ मैं साइन लैंग्वेज सीखूंगा, सिर्फ शौक या नहीं है कि हाँ शौक के लिए सीखना है, शौक तो बहुत सारी चीजें, उसके लिए मैं दूसरे लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, पर मेरे को जो ये चीज है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन राइट वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह पे डाले गए हैं, कि अगर जब आपको ये चीजें स्कूल्स और ये जगह पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो टीचर्स को प्रॉपर वे में ट्रेन किया जाना चाहिए, और जो केयर टेकर्स होंगे और जो ये होंगे मेंटर्स होंगे, जो स्कूल्स में या डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ जहाँ पे भी क्लासेस चलती है, जहाँ जहाँ पे भी उन तरह के स्टूडेंट्स को डील किया जा रहा होगा, उनको लव एम्पैथी और इन प्रॉपर वेज में डील किया जाए, ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग हो सकता, और उनको एक इंक्लूसिव सोसाइटी में बैठाना होगा, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस सबके ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए कि जब वो ग्रो ग्रो कर रहे हैं, और उसमें से जो जो लेना चाहे वो ले सकता है उन एक्सपीरियंसेस में से। कोई अच्छी यादें याद रखता है, कोई बुरी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, तो ये डिफरेंस रहता है। पर बेसिकली रहता है कि आपको एक्सपीरियंसेस सबको इक्वली देने होंगे, उनको मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनको ट्रेन किया जाना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बेसिक। अब जब सारे टीचर्स के लिए एक डिग्री, अगर क्या बोलते हैं, मैंडेटरी है कि एक डिग्री जब मैंडेटरी है, या क्लास का एक ओरिएंटेशन जब दिया जाता होगा प्रिंसिपल से या डीन से या जिस भी कॉलेज से कि आपको ये क्लासेस है, आपको ये चीज़ें इस स्कूल और हॉस्टल के, मतलब जो भी जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं स्कूल कॉलेज के बारे में, तो ये आपको एक चीज़ें ध्यान रखनी है, ये डेकोरम मेंटेन करना है, तो ये ट्रेनिंग तो हर जगह पॉसिबल है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये बहुत ईजिली किया जा सकता है।
राइट राइट सो
इंसान को इंसान की तरह बिहेव करना है बस।
राइट सो लेट्स मूव ऑन। मेरे पास और कुछ सवाल हैं जो मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम क्यू एन ए सेशन में चले जाएंगे। तब तक जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई सवाल है तो वो हमें चैट के माध्यम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं। हम धीरे धीरे जब हम स्लोली एंड के तरफ जाएंगे तो हम वो क्वेश्चंस हम एंड में क्वेश्चंस के जवाब पे आ जाएंगे, क्यू एन ए पे आ जाएंगे। तो यश, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक कोई इंसिडेंट जो तुम्हारे हिसाब से बहुत ही एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो तुम एज एन एग्जाम्पल लोगों तक पहुँचाना चाहोगे, और उसके माध्यम से कुछ अगर मैसेज लोगों तक पहुँचे, ऐसा अगर तुम्हारे पास कोई इंसिडेंट है तो वो प्लीज सुनाओ।
देखिए एक्चुअली तो ऐसे काउंटलेस इंसिडेंट्स है मेरे पास, रेलवे स्टेशन में हुआ है, एयरपोर्ट में हुआ है, रोड्स में हुआ है, पार्किंग, रास्ते, मतलब है ही कहाँ एक्सेसिबिलिटी। तो मतलब मैं तो आपको क्या ही बताऊँ कि कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो जितने मतलब अच्छे एक्सेसिबल इंसिडेंट्स है वो बल्कि मेरे को ज्यादा याद है, क्योंकि वो इतने कम है तो वो मेरे को जल्दी ज्यादा याद रहते। पर एक जो बेसिक ये है कि जो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए मतलब फिनेंशियली भी और कुछ मैं करना चाह रहा था जो चीजों के कारण काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मैं थोड़ा सा आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। कि बेसिकली कुछ साल पहले मैं और मेरी टीम जो थी, हमारे फ्रेंड्स, हम लोग एक कॉमेडी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे यहाँ कोलकाता में, एक अच्छा ऑडिटोरियम था तो उधर में कॉमेडी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। काफी टाइम से चल रहा था और उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, काफी प्रॉब्लम्स थे। तो हमारा परमिट ड्यू था, इवेंट करने का परमिट जो लगता है वो परमिट और कुछ चीजें जो तो लगती है वो काफी सारी चीजें ड्यू थी। तो और काफी एंड हो गया था, हम लोग काफी कॉम्प्लिकेशंस में फंस चुके थे। तो एंड के मतलब कुछ दिन ही बचे थे कि हमको वो परमिट लेने जाना था, तो और वहां से कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो आया नहीं था परमिट। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है अमन, काफी क्लोज फ्रेंड है मेरा, भाई जैसा है वो, तो हम लोग दोनों काफी ये करके उसने बोला कि भैया मैं जाके ले आता हूँ। तो पर उसको फिर पता चला कि मेरे को भी जाना जरूरी है, क्योंकि मेरा कोई सिग्नेचर चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे वो मेरे नाम पे, तो मेरा सिग्नेचर जरूरी था। तो बोला आपको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इधर उधर के चक्कर में हो नहीं पाएगा, दो तीन दिन में इवेंट है, परमिट लेना होगा। ठीक है चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ पे गए तो मतलब पूरा हम लोग कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीचे राउंड 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 घूम रहे थे, ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे जाने का कोई एक्सेसिबल वे है क्या, तो कोई हेल्प करने को तो कोई तैयार, मतलब 8 से 10 पुलिस वाले नीचे बैठे हुए हैं, और वहाँ इतना बिजी एरिया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो प्रॉपर मतलब मूवमेंट चल रही है और बिजी वर्किंग डे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल होंगे। हम लोग यहाँ वहाँ रास्ते में घूम रहे, पूछ रहे लोगों से कि कहाँ पे मतलब एक्सेसिबल कोई रास्ता है क्या जाने का, या ऊपर ये करने का नहीं। तो फिर अमन मेरे को एक जगह पे रोका, और फिर वो एक जगह से पता करके आया कि ऊपर 3rd या 4th फ्लोर पे जहाँ पे हम लोग को जाना है लेने के लिए वहाँ ऑफिस है, और वहाँ जाने के लिए एक एलिवेटर है जो 2nd फ्लोर तक जाएगी, पर वहां से फिर 3rd फ्लोर में जाने के लिए आपके लिए बहुत लंबा स्टेयर्स है, आपको वैसे जाना पड़ेगा, और ये एलिवेटर तक जाने के लिए हम लोग को 10 से 12 स्टेयर्स और चढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग ज्यादा परेशानी में आ गए कि यार अब ये, और ये गवर्नमेंट ऑफिस की बात हो रही है, हाँ जो कोलकाता का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये वहां पे बात हो रही है, कोई ऐसी गहरी जगह भी नहीं है कि कोई बहुत ये बनाई हुई हो जहाँ पे हो।
राइट
वहां पे, जहाँ की मस्ट होना चाहिए ये चीज, और वहां पे एक्सेसिबल लोगों के लिए कोटा वोटा है कि उन लोग को जॉब मिलती है और ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो वहां पे ये चीज चल रही है। अब वहां पे हम लोग बैठ खड़े हैं कि अब यार कैसे जाएं, तो अमन कोशिश कर रहा है, अगल बगल लोगों से पूछ रहा है कि सर थोड़ा हेल्प करा दीजिए, पुलिस वालों को बोल रहा है, बगल में बैठे हैं लोगों को बोल रहा है हेल्प करा दीजिए थोड़ा सा लिफ्ट करके, ये 10 to 12 स्टेयर्स ऊपर चढ़ाने के लिए, कोई हाथ नहीं लगाने के लिए आ रहा कि हम थोड़ा सा हेल्प करा दें। एक्सेसिबिलिटी तो थोड़ी दूर की बात है, एक दो जन को उसने बोला तो वो लोग ने ये बोल दिया कि यार हमको काम है, हम बिजी, हम जा रहे, मेरा टाइम हो गया, इस तरह की बातें वो बोल दी कि नहीं यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो वो सारी चीजें देख के इतना ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर कोई दो जन आया, किसी को उसने बहुत ज्यादा प्लीट किया कि सर बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप चलिए, तो वो लोग ने आया हेल्प किया, और अमन तो था ही, तो हम लोग ने, उन लोग ने मिला के मेरे को लिफ्ट किया, मैंने सबको थैंक किया, फिर हम लोग ऊपर चले गए। फिर ऊपर गए तो वहां पे कम से कम नहीं तो भी 25 to 30 स्टेयर्स थी, और वो भी वुडन स्टेयर्स, जहाँ ऊपर जाना है वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम। वहां तो लोग और कम थे ऊपर में, और वहां पे किसको बोला जाए, कैसे बोला जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ एलिवेटर के पास जाने के भी अब सिर्फ समझ नहीं आ रहा, और मेरा सिग्नेचर के लिए ऊपर, फिर मैं उसको बोला कि तू ऊपर पूछ के आ जा, कि अगर वहां से सिग्नेचर के लिए तू नीचे ला पाएगा तो मैं नीचे लाके कर दूंगा यहाँ पे सिग्नेचर। तो वो ऊपर गया, फिर ऊपर देख के आया तो बोला कि भैया वहां पे तो बहुत ज्यादा लाइन लंबा वेटिंग है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। वो लोग बोलते ऊपर ही आ जाओ, वहां से हम लोग डॉक्यूमेंट्स नीचे लाके ये नहीं दे सकते, टाइम पे आपको वहीं पे करना पड़ेगा। फिर वो एक अलग प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए वो उसने बता के भी आया कि वो व्हीलचेयर में है, वो नहीं आ सकते, पर लोग सुनने को तैयार नहीं। तो फिर जैसे तैसे उसने और किसी को रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे कोई वो स्नैक्स वाले लोग रहते हैं जो मुड़ी और ये सब बेचते हैं वो लोग, तो उन लोग से रिक्वेस्ट करके फिर और वापस हम लोग ने ऊपर गए। फिर वहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटा वेट किए, फिर सबका काम हुआ, फिर हम लोग ने अपना काम किया, पैसे वैसे दिए, सब परमिट्स ली, सब कुछ किया, फिर वापस वहां से पूरा वापस नीचे उतरवाने के लिए फिर हम लोग ने आधा घंटा वेट किया। फिर अमन किसी को खोज के लाया कि रिक्वेस्ट किया उसने नीचे उतारने के लिए, फिर वहां से वैसे ही सेम प्रोसीजर करके फिर आए हम लोग घर। फिर उसी के बाहर में हम लोग को आना पड़ा कोलकाता पुलिस स्टेशन में, जो लाल लाल बाजार पुलिस स्टेशन है, वहां पे भी परमिट लेना था। तो वहां लकीली ये चीज था कि मैं बाहर में वेट कर रहा था और ये अंदर जाके वहां पे लेके आ गया, उसने खाली बोल दिया कि मेरे भैया व्हीलचेयर में है, वो बाहर है, तो वो बाहर आके पेपर लाके साइन करवा के मुझसे अंदर ले गया। तो वो एटलीस्ट वो उतनी सुविधा मिल गई थी वहां से। तो इस तरह के इंस्टेंसेस मतलब एक नहीं है, बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी जगहों पे हुए हैं। तो ये सब अब मैं किसको बोलने जाऊं कि अब लोग भी हेल्प करने आएंगे, 1000 अच्छे लोग मिले हैं मुझे, तो मैं इसीलिए कंप्लेन ज्यादा नहीं करना चाहता कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं तो अब मैं क्या करूं, पर 1000 अच्छे लोग भी मिले हैं इसकी जगह। तो यही है। और एक और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या है कि जहाँ कुछ लोग ना थोड़े कंसिडरेट लोग होते हैं ना, तो वो बहुत बार क्या ट्राई करते हैं कि हम लोग के लिए एक्सेसिबल ऑप्शंस बना दिया जाए या एक्सेसिबल चीजें कर दिया जाए, पर कभी हमको कंसल्ट करके नहीं किया जाता है। कोई डिसेबल्ड पर्सन उसको पूछ लिया जाए, अगर तुम इंटरनेशनल एक्सेसिबल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, वहां दिया हुआ है सब कुछ कि कैसे क्या चीजें बनानी है, रैंप कैसे बनानी है, कैसे क्या चीजें करनी है, मतलब कैसे एलिवेटर होना चाहिए, कैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, कैसे एक चीजें होनी चाहिए। अगर वो तुम यूज नहीं कर रहे हो तो कम से कम किसी को अपने प्लानिंग कमेटी में ही रख लो, उसके प्लानिंग प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनको रख लो, बाद में खाली रिबन काटने के लिए मत बुलाओ कि नहीं आज रिबन काटने के लिए बुला दे रहे, इनको चढ़ा दे रहे, ये सब और डीप में इश्यूज।
तो इस चीज़ को मतलब साधारण लोगों तक समझाने के लिए मुझे लगता है हम अभी भी काफ़ी साल पीछे चल रहे हैं। और जब जो गवर्नमेंट हमें काफ़ी सारे नियम और पॉलिसी लाते हैं, अगर उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है डिजेबल लोगों के लिए, और वो इवन सोच भी नहीं रहे हैं, और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम कम से कम 20-25 या 50 साल अभी भी पीछे चल रहे हैं। अगर हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी का अगर एक ड्रीम अगर दिखे, तो वो अभी भी हम लोग काफ़ी साल पीछे चल रहे हैं। तो
की आवाज थोड़ी सी कट रही है,
मेरी आवाज़ कट रही है? ठीक है, थोड़ा सा मेरे इधर
अभी
पे।
ठीक है।
हाँ ठीक है, अभी ओके।
हाँ
तो
हाँ हाँ अभी ठीक।
हम कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल जो मुझे कुछ सवाल मिलना चालू हो गए हैं, हम उस सवाल पे आएंगे। मैं लिसनर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप लोग रुक जाए, मेरे पास बस और दो तीन सवाल हैं जो हम कंप्लीट करके हम वापस आएंगे उस पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो जब हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी?
मेरा आइडिया बहुत ही सिंपल है सौरभ, कि इंसान को इंसान का दर्जा दो, उसकी एबिलिटी पे जज मत करो, और बेसिकली सबको सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज दो, एक्सेसिबिलिटी दो और रेस्पेक्ट दो, उनको एक फेयर चांस दो, फिर जो जहाँ डिजर्व करता है वो पहुंच जाएगा, और फायदा सबको ही होगा इस हारमोनी से। मनी एनर्जी सही जगह पे और डिजर्विंग जगहों पे स्पेंड होगी, आलतू फालतू जगह पे वेस्ट नहीं होगी, और इससे फायदा हर तरफ से है। एक वेल राउंड सोसाइटी जो होती है किसी भी जगह की, तो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ये, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है ये कि एक सोसाइटी इंक्लूसिव हो, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है।
ओके, मेरी आवाज़ तुम्हारे तक आ रही है यश?
हाँ,
ठीक है, ठीक है, राइट। तो इस आइडिया तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा कौन से स्टेप लेने चाहिए, या कुछ पॉइंटर्स अगर तुम डिस्कस करना चाहो?
ये भी, हाँ ये थोड़ा सा लेंदी है, ये भी लोगों को सुनना होगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, और ये थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं इन चीजों को लेके।
राइट राइट
बेसिक है कि सबसे, इसमें चार पार्ट है बेसिकली। सबसे पहला है रिकॉग्निशन, पहचानना, दूसरा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तीसरा है एक्सेसिबिलिटी, और फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिक चीज है कि रिकॉग्निशन, कि ये हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये हमको मानना पड़ेगा कि जो लोग हैं डिफरेंट एबिलिटीज के साथ में, वो अभी भी इंसान है, उनके अंदर में भी सपने हैं, उनके अंदर में भी टैलेंट्स है, उनके अंदर में भी स्किल है, उनको भी दिल का दर्द होता है, उनको भी लॉस फील होता है, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, सबके जैसा, सबके जैसे फीलिंग्स उनके अंदर में भी है। तो इस बेसिस पे हर पर्सन को एक एक जैसा दर्जा दिया जाए। आज हमारे पास में पैरालंपिक एथलीट्स हैं, जो पैरालंपिक होता है, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के इतने गजब गजब एथलीट्स हैं, रिप्रेजेंट करके मेडल्स लेके आए हैं वहां से, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स में है और सब कुछ है, वो पूरी वर्ल्ड देख रहा है उनको, पूरा इंडिया देख रहा है, प्रेसिडेंट उनको मेडल दे रहे हैं, मेडल ले रहे हैं वो, गवर्नमेंट्स मेडल दे रही है, पूरे लोग, पूरी इंडिया उनको देख रहा है। उसके बाद आज एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स है एयरपोर्ट में, स्टेशंस में, हर जगह, मतलब ये तो अब आपके आंख के सामने ही है, अब तो आप बोल नहीं सकते कि, मतलब जिनको पता नहीं है उनसे तो मेरे को कोई शिकवा ही नहीं है, पर उनको तो अवेयर करना है, पर अब जिनको दिख रहा है ये चीजें, मतलब ये तो उनके आंख के सामने है, प्रेसिडेंट से मिल रहा है मेडल, तो पूरी दुनिया देख रही है आपको, तो अब उससे ज्यादा और क्या रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि एक आदमी डिफरेंटली एबल्ड है, इसके लिए मैं एक रास्ता बनाऊं। आज नॉर्मल एथलीट्स जो इंडिया के हैं उनके लिए ही इतनी प्रॉब्लम्स है चीजों को लेके, तो मैं एथलीट्स के मतलब रिसोर्सेस पे तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अभी नॉर्मल एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि एटलीस्ट उनको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, या किस, मतलब पूरे इंडिया में आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन हो, या प्रॉपर एक वे ऑफ लिविंग हो, कुछ तो एम्पावर करो। और इन इंसाइट्स के कारण ही जो जो डेवलपमेंट हुआ है इंक्लूजन में अभी रिसेंट ईयर्स में, वो काफी अच्छा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट एक पास हुआ था 2006 में, तो उसके कारण जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटीज के लिए ऑल इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में उनको इंक्लूड करना होगा, ऐसा बोला गया है जो 2006 में ये एक्ट ये हुआ है। और 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें भी यूएन ने लास्ट ईयर ही अग्री किया है कि ये इस डायरेक्शन में हमको सबसे आगे बढ़ना है, कि हमको इंक्लूजन सोसाइटी में सबसे ज्यादा बढ़ाना, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है उनमें तो ये मैंडेटरी लागू होना ही चाहिए। तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का अन्याय इन लोगों के खिलाफ में नहीं चलेगा। और इन सारा का सक्सेस पता करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो इन चीजों को प्रेशर दे रही है और उन चीजों को, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए काफी हेल्प करना पड़ेगा, और जो भी है तो उन चीजों को काफी की बैरियर फ्री चीजें, बैरियर फ्री एक वर्ल्ड बनाया जाए, तो कि ये खाली एक शेयर ऑफ पॉपुलेशन को नहीं बट सबको क्या बोलते बेनिफिट करे। तो ये एक है। फिर सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो एजुकेशन हर लेवल में जरूरी है, बच्चों के स्कूल से लेके वर्क प्लेस तक, कॉलेज से लेके वर्क प्लेस तक, हर जगह लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, कि एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी कि वो प्रॉपरली उन तक वो रिसोर्सेज पहुंचे, उन तक वो अवेयरनेस पहुंचे कि किस तरह से इनको करना, इन चीजों को हैंडल करना है और किन तरह से उन चीजों को डील करना है। साइटलेस के लिए एक ब्रेल लैंग्वेज की ट्रेनिंग, स्पीचलेस के लिए एक साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, अदर डिसेबिलिटीज के लिए भी जो जो रिक्वायरमेंट है वैसा कुछ सिमिलर करना। अब ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में सिखा दिया तो हो गया, क्योंकि तो इतने सारे लोग हैं स्कूल में नहीं बट सफर तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की नाइंसाफी, कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इनकम्युनिकेशन से उनको पता तो चलना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करना, उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन प्रॉपर वे में और अवेयरनेस इस चीज की सब तक पहुंचनी चाहिए, ये चीजें यहाँ हो रही है या ट्रेनिंग की क्लासेज है इनके स्कूल से, ये आप लें और कम्युनिकेट करना सीखो, ताकि कम्युनिकेशन से ये जो गैप है वो गैप और कम हो और ये वॉइस और ज्यादा एम्पावर हो जो अभी इतनी कमजोर है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेनेशन यही है कि एक्सेसिबिलिटी हर किस्म से देना लोगों को, कि मतलब हर तरफ से उनको एम्पावर करे एक इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, कि अकेले जी सके इंसान, कि व्हीलचेयर के लिए रैंप्स बना देना, बाथरूम्स, ट्रांसपोर्ट, एलिवेटर, ये सब कुछ इंटरनेशनल एडीए गाइडलाइंस के अंदर में करना। जो साइटलेस है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन फ्री पाथ बनाना, ब्रेल लैंग्वेज का यूसेज करना इंस्ट्रक्शन के लिए, और ऐसे जिन जिन जगह पे जो जो चीजें की जा सकती है वो करना। आज हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का यूज होता ही है हर जगह, कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए ट्रेन्स में, ट्रांसपोर्ट में, बसेस में, हर जगह लिखा हुआ रहता है एक हिंदी में, एक रीजनल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश में कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिस, उसको ब्रेल में भी कर सकते हैं। तो वो अंधे लोगों के लिए, बेचारों के लिए वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी जो देख नहीं सकते। तो इन तरह की चीजें काफी लोगों को हेल्प करेगी और केटर करेगी हर तरह के सिटीजन को। और फोर्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। ये मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये सबसे ज्यादा बढ़ाना है हमें हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। पीपल विद डिफरेंटली डिफरेंट एबिलिटीज शुड बी इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड करना ही चाहिए हर चीज में, आपके डिस्कशंस में, आपके काम में, आपके वर्क में, आपके डेवलपमेंट में, आपके आइडिएटिंग में, आपके सॉल्यूशंस में, हर जगह पे उनको आगे लाना होगा और उनको खुद को भी आना होगा, उनको स्टैंड लेना होगा ताकि ये चेंजेस आए। हम मिलके ही कुछ कर सकते हैं। सो कॉल्ड एबल बॉडीड जो लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई आप कर रहे हैं, हम भी हैं उसमें, इनकी रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान दें, इनको भी रिप्रेजेंट करें, इफ नहीं कर सकते तो इनको आगे करें। मैं अपनी फील्ड में कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं सौरभ, आपको पता है कि वहाँ पे क्या हाल है, कितनी एक्सेसिबिलिटी है या कितनी इंक्लूसिवनेस है, ठीक है, कि कितने लोगों को काम दिया जाता है या कितने लोगों को एटलीस्ट इंक्लूड किया जाता होगा कि किसी चीज में प्रॉपरली डिस्कशन किया जाए या क्रिएटिव डिस्कशन में हेल्प किया जाए। तो पर मेरे को अपने आर्टिस्ट कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा प्राउड है मोर देन एनीवन, कि मुझे लगता है कि बाकी बिजनेस और ये चार भी चीजें तो है ही, पर वो इन चीजों को जरूर समझेंगे और शायद मे बी वो दे स्टार्ट लीडिंग बाय दिस एग्जांपल। और मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल शेयर करना है, और ये अभी वर्ल्ड में आई थिंक सबसे पहली बार हुआ है, या मैंने तो अपने लाइफ में सबसे पहली बार देखा, और मैंने थाउजेंड्स ऑफ मतलब आवर्स के कंटेंट देखे। सेक्स एजुकेशन बोल के नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, उसमें एक कैरेक्टर है आइजक बोल के, वो व्हीलचेयर पे है, उसको मतलब वो टेट्राप्लेजिक है, उसको एक कैरेक्टर, उसको जो एक्टर प्ले कर रहा है उसका नाम है जॉर्ज रॉबिन्सन, और उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि उसको मतलब एक नॉर्मल क्लीशे कैरेक्टर नहीं बना दिया गया जो एक सीन करके चला जाता है और कुछ बोल के या कुछ कर, उसका प्रॉपर रोमांटिक एंगल है, उसके प्रॉपर मतलब लेयर्स है और सब कुछ है, और वो एक्टर रियल में डिसेबल्ड है, वो एक्टर रियल में व्हीलचेयर में है, उसको 3 इयर्स पहले या 4 इयर्स पहले रग्बी इंजरी हो गई थी, उसके कारण वो टेट्राप्लेजिक बना, और उस एक्टर को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया, और वो भी सिर्फ एक सीन के लिए नहीं, पूरी सीरीज के लिए, वो पूरे सीरीज में उसका डेफिनेटिव रोल है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेशन का, कि यहाँ पे ये है। फिर स्टीफन हॉकिंग्स है हमारे लिए, क्या बोलते हैं, साइंस में उन्होंने सिर्फ अपने ब्रेन के दम पे, बॉडी तो उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, अपने सिर्फ ब्रेन के दम पे ब्लैक होल के और यूनिवर्स के कितने सारे सीक्रेट्स, क्या बोलते हैं, अनर्थ किए, कितनी सारी चीजें। तो मतलब बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है हर फील्ड में, हर जगह पे। और आपको पता है कि जो ADA है वो एग्जिस्टेंस पे कैसे आया, अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक एक्ट है 1990 पे हुआ हुआ, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, मतलब हजारों लोग वो जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनकी स्टेयर्स पे क्रॉल करते हुए चढ़े थे, व्हीलचेयर तो जा नहीं सकती थी, सीढ़ी थी पूरी, तो वो क्रॉल करते हुए चढ़े, तब तक उनकी आवाज सुनाई ना दी उनको, जब तक उनको आवाज सुन के वो समझ नहीं आए कि क्या बोलते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, हम लोग तब तक पूरा क्रॉल करते हुए ऊपर तक चढ़े थे, और उसके बाद उनका क्या बोलते बात सुनी गई, और वो एक्ट यहाँ पे 1990 में आया, और ऐसे ही सिमिलर एक्ट 1995 में इंडिया में भी आया, और आज तक है वो, PDA उसका नाम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया हुआ है यहाँ पे, और आज 2020 चल रहा है, आज तक सिवियरली अंडर इम्प्लीमेंटेड है ये। उसके डिटेल्स में जाऊंगा तो वो एक अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इंडिया में आज इन्होंने हर एक ट्रेन में एक डिसेबल्ड बोगी रखी है ना, ये इंजन के बगल में रहता है, उसकी कंडीशंस तो छोड़ ही दीजिए कि उसकी कंडीशन अंदर से कैसी है कैसे नहीं है, उस पर तो मैं क्या ही बोलूं, पर उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, उसमें जाऊं कैसे, मैं उसमें रहूं कैसे, मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, कुछ भी करना है तो। और PDA के स्पेसिफिक रूल्स हैं, मतलब इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक रूल्स है, जो मतलब उनके सेक्शंस में पूरा प्रॉपरली ये किया गया, अगर कोई पढ़ने जाए तो उसमें। पर मैं आपको जैसे बोला कि वो एक अलग ही एपिसोड हो जाएगा, कि मतलब ऐसा तो है कम से कम कि सिस्टम्स कुछ कुछ प्लेस पे हैं, उनको एक्शंस में लाना है। अब अमेरिका में ADA आने के बाद जिस तरह की डेवलपमेंट्स आई है फोर्सेस, इकोनॉमी और अदर थिंग्स में, उसके प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स हैं, और वो एक एग्जाम्पल की तरह लिया जा सकता है कि ग्रोथ के लिए सबको इंक्लूड करना जरूरी है, और इसके लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी आवाज अभी कमजोर है और कम है, इसको एम्पलीफाई करना होगा सबको मिल, और ये याद रखना होगा कि ये किसी से भी हो सकता है या किसी को भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स और बर्थ डिसेबिलिटीज या किसी को भी बोल के नहीं होगी, और ये बाई बर्थ भी हो सकता है या किसी को 100 साल की उम्र में भी हो सकता है, तो वो तब जाके सोचे और गाली दे कि यार मैं बेटर दुनिया, मेरे को जब पता चला था तो मैं बना लेता, या मेरे लिए नहीं है तो बना लो यार अपने लिए, अभी भी समय है आपको बनाने का।
और मुझे, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जब तुम बोल रहे थे तो काफ़ी सारे चीज़ जो है मेरे सामने विजुअल्स की तरह आ रहे थे। अगर हम लोग ध्यान दें तो जब पुराने समय में न्यूज़ हुआ करता था तो कोई ना कोई न्यूज़ में हमेशा उधर पे एक साइन लैंग्वेज में कोई ना कोई उसको बताता था कि भाई न्यूज़ रीडर न्यूज़ रीड कर रही हैं, और शी यूज़ टू स्टॉप फॉर सम टाइम, और एक साइन लैंग्वेज में उसको समझाया जा रहा था। आज हमारे पास इतने सारे न्यूज़ जर्नलिज्म हो रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई चैनल में कोई कभी भी सोचता होगा कि भाई हमारा न्यूज़ हम किसके लिए चला रहे हैं। एक भी शायद चैनल में ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कम। आज मैंने एक चैनल में देखा कि वो चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से हम लोगों को सिखाया गया है कि बहुत ज़ोर से दौड़ना है, और हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, आँख बंद करके सिर्फ ज़ोर से दौड़ो, तो शायद हम भूल रहे हैं कि हमारे साथ साथ इस सोसाइटी में और भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनको शायद हम पीछे छोड़ के आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आज मुझे लगता है कि पूरा दुनिया जो है इस लॉकडाउन के माध्यम से एक डिजेबल होने का एक उनको आइडिया तो आया होगा कि जब अचानक से किसी के लाइफ में कुछ ऐसे हो जाता है तो कैसे आज, क्योंकि हम सब लोग, ऐसे लगता है कि हम सब लोग जेल के अंदर बंद हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं कहीं कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम एक घर के अंदर बंद हैं लेकिन हम कुछ ना कुछ तरीके से हम अपना रास्ता तो ढूंढ के निकाल ही रहे हैं, तो ऐसे ही हमें अगर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है तो इन सारे लोगों को लेके चलना है। स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, मेरे सामने छपी आ रहा था कि किस तरीके से हम स्पोर्ट्स में भी जो है बड़े लेवल पे सिर्फ क्रिकेट को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी सारे स्पोर्ट्स को कैसे हम लोग इस सोसाइटी से अलग मान के चल रहे हैं कि वो तो भाई है, चलो कोई कर रहा है, कोई जीत रहा है तो ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ क्रिकेट को ही पूजेंगे। तो ये सारा जो मेंटेलिटी है, और ये मुझे लगता है ये सारे इंस्टीट्यूट के हेड इंडिविजुअल्स जो अच्छे पोजीशन पे हैं, ये सब अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और जो हमारे डिजेबल लोग हैं उनको अगर एक साथ लेके चलें, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। और इस, और ये सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही है, यश बार बार हमें यूएन के एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूएसए का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो सर देर आर सो मेनी डेटाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल, जिसको बेस करके हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं एक अच्छे दुनिया के लिए। तो यश, हम लोग ये आज ऑलमोस्ट टू द एंड हैं, तो हमें आइडिया मिल चुका है, हमने काफ़ी सारा कुछ डिस्कस किया है। एक पॉइंट जो हमें बार बार ये लग रहा था कि हम अगर इंक्लूसिव सोसाइटी का कहीं से शुरुआत करेंगे तो वो है एडुकेशन, वो है स्कूल, वो है प्राइमरी लेवल एडुकेशन। तो शायद हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा किसी और के साथ जो इस विषय में, और जो इस विषय के साथ मतलब इंक्लूसिव एडुकेशन एट द प्राइमरी लेवल को लेके काम कर रहे हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे। वो एक दूसरा पॉडकास्ट होगा, कभी और करेंगे, इस आज के इस कहानी को और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर वी गोज़ इन टू द क्वेश्चन एंड आंसर, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, कुछ ऐसा चीज़ जो तुम्हारे तरफ से छूट गया है या मेरे तरफ से छूट गया है, या तुम कुछ इस पूरे पॉडकास्ट में ऐड करना चाहते हो, तो उस वो वाला सिलसिला शुरू करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन।
तो सौरभ, बेसिकली मेरे हिसाब से ना, इंसान चोट से अपाहिज नहीं होता है, समाज उसको अपाहिज बनाता है। पहली अपने सिंपैथी से, फिर नाकारी से। इंसान को जब तकलीफ खुद पे ना आए, दूसरों की दिखती नहीं है, एम्पथी एकदम सी गायब सी हो गई है, पता नहीं कैसे। स्पेशल प्रिविलेज तो किसी से मांग ही नहीं रहे हम। एक्सेसिबिलिटी हक है लाइफ में, फेयर चांस का। उसके बाद जो जहां डिजर्व करता है वहां पहुंच जाएगा। तो अब वर्ल्ड की रिबिल्डिंग शुरू होगी, एज स्लोली हम लोग अब रियल दुनिया में जाएंगे। लॉकडाउन अगर कल खत्म होता है, या जो भी अब बढ़ता है, जहां जहां पे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ चुका है और भी जहां जहां पे चीजें बढ़ रही है, अब जो भी हम लोग स्लोली रिबिल्डिंग फेज में अब वापस जा रहे हैं दुनिया के, अब सिस्टम्स रिबूट होंगे, काफी सारे लॉज अमेंड होंगे, और नए हेल्थ केयर सिस्टम और बेटर बनाने की, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की कोशिश है, जो उन्होंने काफी अपनी स्पीचेस में भी बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा और ये सब काफी पॉजिटिव चीजें, और मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है कि इन चीजों को, में इंक्लूसिव सोसाइटी को, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव जो एक नेचर है उसको इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि डेवलपमेंट फेज में आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो और कुछ भी चीजों को अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और बहुत सारे हमारे लॉस तो इन प्लेस है, हमको तो बस उनको एक्शन पे लाना है। तो ये बात वहां तक पहुंचानी है चेंज मेकर्स के थ्रू, और डेवलपिंग सिस्टम्स जो भी हैं उनसे थ्रू, कि उसमें थोड़े थोड़े अमेंड्स लाने। तो ये बेसिकली अभी कोशिश यही है कि अब वहां तक आवाज कैसे पहुंचे, और नहीं अभी पहुंचे भी तो बाद में भी पहुंचे, तो ये तो मेरा वादा है कि मैं पहुंचा के तो रहूंगा। जहाँ कान कान तक पहुंचनी चाहिए आवाज, वहां तक तो पहुंचेगी जरूर, क्योंकि हमारी वॉइसेस है जो हम चैलेंज करेंगे ही करेंगे। वी नीड टू बिकम द वॉइस ऑफ द चैलेंज, सो वो तो हम करेंगे ही करेंगे।
राइट राइट
और एंड नोट्स में मैं बस एक ही कुछ बोल एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, जिन्होंने आज तक इतना सपोर्ट किया है, कभी कमजोर फील होने नहीं दिया। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ, बहुत आभारी हूँ इन चीजों को लेके, कि मुझे इन्होंने कभी डिसेबल्ड फील होने नहीं दिया। तो आई विश ऐसी फैमिली सपोर्ट, ऐसे फ्रेंड्स और लोगों को भी मिले जो उनको प्यार दें, जज ना करे, उनको उनके तरीके से चीजों को डील करने दें, उनके लिए रास्ता बनाते जाएं, वो अपने आप से सब कर लेंगे, आप बस उनको इंडिपेंडेंट बना दीजिए। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स और सारे फैमिली को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक मेरे लिए बहुत किया। मुझे आज तक कभी प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि मैं जहाँ पे उनको प्रॉपरली थैंक्स बोल पाऊँ। थैंक्स बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ह्यूमन का तरीका है, पर प्यार के लिए मैं एटलीस्ट ग्रेटफुल जरूर हूँ। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट नोमैड है हमारा एक इनिशिएटिव है, इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम जो कुछ कोशिश कर रहे हैं आप तक कुछ अनर्थ स्टोरीज पहुँचाने की, इंक्लूसिव सोसाइटीज है और भी काफ़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उनको सौरव और पूरी टीम हमारी सब कोशिश कर रही है दुनिया में अवेयरनेस लेके आए और हम इंडिया में उन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाएं। तो उनको फॉलो करें आप, सब्सक्राइब करें चीज़ों को और देखें आप। तो अगर आपको कहीं नहीं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना तो मत कीजिए, पर आपको एटलीस्ट अवेयरनेस रहेगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। तो कभी अगर आपको मौका मिले उन चीज़ों पर एक्ट करने का तो आप कर पाए।
तो इसी के साथ साथ आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे ऑनलाइन लिसनर, सभी को मैं मेरी तरफ से और प्रोजेक्ट नोमैड की तरफ से शुक्रिया कहना चाहूँगा। आई होप आप सब लोगों को आज का जो ये पॉडकास्ट था ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश किया, हम दोनों ने मिलकर कोशिश किया कि जितना हो सके हम एक इन डेप्थ बात करें। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हर संडे को हम लोग दोपहर को 3 बजे से कोई एक टॉपिक लेके इसी चैनल पे आके लाइव डिस्कस करते हैं और ऐसी सवाल जवाब के थ्रू हम लोग बात करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट नोमैड पे आज जिन लोग आज पहली बार आए हैं, मैं उन लोगों से कह देना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट नोमैड अल्टरनेटिव एजुकेशन और लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं, और हम लोग जो भी अवेयरनेस है इन सब चीज़ों के ऊपर उसको हम सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग स्मॉल स्मॉल फिल्म्स। नाउ राइट नाउ अंडर दिस लॉकडाउन हम लोग बाहर नहीं जा सकते और हम लोग फिल्म नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोगों ने ये एक ज़रिया चूज़ किया है कि हम लोग हर संडे को किसी ना किसी सब्जेक्ट पे हम लोग किसी ना किसी के साथ बात करेंगे, और वो इंसान ऐसा होगा जिसने अपने से उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो आज हमारा था इंक्लूसिव सोसाइटी, और इसका एक हम लोग अगला पार्ट भी बनाने का सोच रहे हैं जहाँ पे हम लोग एडुकेशन में कैसे इंक्लूसिवनेस को इंक्लूड किया जा सकता है, उस चीज़ पे हम और गहराई से बात करेंगे। सो एक बार फिर से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और स्पेशली यश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे एंड शेयरिंग सच अ ह्यूज यू नो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़ जो तुमने दिए हैं सारे, सब कुछ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनली मेरे लिए, और जितने भी लोग आज जुड़े हैं शायद उनको भी काफ़ी ये हेल्प करेगी। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू टू एवरी वन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वंस अगेन यश, एंड दिस इज सौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर लाइव पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।